से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है और वे भगवान की माया द्वारा अपनी विविध योजनाओं में निराश कर दिए जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। अहनिया प्रतार्थ करणाम निस्निह शयानाम नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राम देवार्थ देवाहतार्थ रचनाम ऋषियोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरंती। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में बाधा डालती रहती है। अनिद्रा से पीड़ित होने के कारण पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें सवेरे सवेरे नींद सताती है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच जाएं, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण वे फिर से भौतिक संसार में गिरते हैं। ये निर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनम त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध गण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं। तो देखा ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि कानों से आपको देखते हैं, इन आंखों से नहीं। इन आंखों से अगर हम देखते हैं भगवान को तो क्या दिखाई देते हैं, पत्थर की मूर्ति। लेकिन जब कानों से हम श्रवण करते हैं तो विमल होता है और फिर आप उनके हृदय में आते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उनके सामने विशेष रूप से प्रकट करते हैं, जिसका वे सदैव चिंतन करते हैं। तुम भक्ति परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यन यन धियाता उरुगाय व्यभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा बहुत ठाट बाट से और साज सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक कामना आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं। सूर्य गणेर हृदय बद्ध काम यत सर्वभूत दया सदलभ्य है को नाना जने स्वहिता सुरदन आत्मा। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग किया उग्र तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कर्म भी जो आपकी पूजा करने में आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से अगर किए जाएं तो लाभप्रद होते हैं, ऐसे कर्म भी व्यर्थ नहीं जाते। पुंसाम तो विविध कर्म भी अध्वराद्य दाने न चोग्र तपसा परिचर्य याचम आराधनम भगवतम तब संक्रियार्थो। तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को अच्छी नहीं लगती। तड़क भड़क स्वभाव के लोग मतलब जो रजोगुणी हैं, उनको एक स्थान में बैठ के कृष्ण कथा में करना अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है, बाहरी जो अनुष्ठान है, दिखावा, खर्चीले, वो उनको अच्छे लगते हैं। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाए, बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार का आते हैं। संसं स्वरूप महासैव निपीत भेद मोहाय बोध धिष्ठनाय नमः परस्मै विश्वोद्भव। तो से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंग शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। आगे बहुत सुंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके अवतार गुण और यश्यावतार गुण कर्म विडम्बनानी नामानि येषु विगमे विविशा गृणन् तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वां संयान्त पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये। नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं। तो संसार की तुलना वृक्ष से की जाती है, भगवान जड़ हैं। तो जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में पानी जाता है, उसी प्रकार से भगवान की पूजा से पूरे संसार की पूजा होती है। और ये जो वृक्ष है इसके तीन तने हैं, एक तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हूँ, दूसरे शिव और तीसरे सर्वशक्तिमान आप हैं। सृजन पालन संहार के लिए तीन तने हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष में आपको नमस्कार करता हूँ। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं चाहम स्थ्युत्युन्भव प्रलय हे तव आत्ममूलम भेत्वा त्रिपाद्मवृद एक उरु प्ररोहन तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, निराकार निर्विशेष नहीं है। तो भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवत गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। तो ये जो संसार है ये उल्टा वृक्ष है और जो भगवान का धाम है वो सीधा वृक्ष है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सामान्य लोग मूर्खता के कार्यों में लगे हैं, वे अपने मार्गदर्शन के लिए आपके द्वारा जो बताए गए कार्य हैं उनमें नहीं लगते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति है, मूर्खता की जो प्रवृत्ति है, ये बड़ी बलवान है और जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। भगवान जो है काल के रूप में उनकी सब योजनाओं को छिन्न भिन्न करते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् तुदिदिते भवदर्शनेषु यस्तावदस्य बलवानि हैं जीविताशाम सद्यश्चिन्नित्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। भागवत में बताया गया है सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक संख्या 30 से 32 में, जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए तैयार हैं तो वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा और न ही आत्म साक्षात्कार द्वारा और न ही परस्पर विचार के द्वारा कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। वे बिना लगाम के इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकार के क्षेत्र में खींचे जाते हैं। इस तरह वे चबाए हुए को चबाने का प्रयास करते रहते हैं। चबाए को चबाने से क्या आनंद आता है? कुछ नहीं, कोई रस नहीं है। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण ये नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष गलत दिशा में होता है। वे अपने जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाए जाते हैं, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाए और दोनों ही खंडक में गिर जाते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवाम मितो भिपद्येत गृह व्रतानाम अदाम गोभिर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्तमानिनः अथम अंधा यथांधे रूपनीयमानां ते पीसे तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं और जब तक उनमें ये बुद्धि नहीं आती है कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक उनका जीवन व्यर्थ है। नैसा मतिस्तावदुरु क्रमांग्रिम इस प्रसत्य नर्थाप गमु यदर्था महियसाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचना नाम वृणीत यावन। हे प्रभु, ब्रह्म जी कह रहे हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो काल हैं, अविनाशी काल हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। ये तभी मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्ध की अवधि तक विद्यमान रहेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा स्थान दो परार्ध की अवधि, दो परार्ध का मतलब 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना समय। फिर भी मैंने यद्यपि आत्म साक्षात्कार के लिए अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यस्माद् भेम्य हमपि विपरार्ध दृष्ण्यम अंध्यासिता सकल लोक नमस्कृतम यन् ते पे तपो बहु सबुं वरुत्थमानस तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए स्वेच्छा से विविध योनियों में अवतार लेते हैं, जैसे पशुओं में भी अवतार लेते हैं, देवताओं में भी अवतार लेते हैं और मनुष्य में भी अवतार लेते हैं, परंतु आप भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होते, आप धर्म के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आते हैं, अतः आपके ऐसे विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रियंग मनुष्य विबुधादिशु जीव योनि स्वात्मेच्छयात्म कृत सेतु परीप्सयाय प्रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने और अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तक वे विविध अवतार अपने प्रकट करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, उस भयानक लहरों वाले समुद्र में प्रलय काल में आप आनंद लेते हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस समय ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। यो विद्यानुपहतोपि दशार्धवृत्त्यां निद्राम वाह जठरी कृत लोक यात्रा अंतर जले ही कसिपुं स्पर्शानुकूलाम भीमोर्मि मालिनि जनस्य सुखम विवृण्वन्। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की विशेषता ये है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल और दिशा की सीमाओं के बिना सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक विचारों की परवाह किए बिना अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने के लिए आपके कमल नाभि के घर से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मांड के ये सारे लोग जब आप नींद का आनंद ले रहे थे आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे, अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातःकालीन विकसित कमलों की तरह खुले हुए हैं। यन्नाभिपन्न भवनादः मासमीड्य लोकत्रयोपकरणं यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्य भावाय योगं निन्द्रावसान विकसन नलीने क्षणाय। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक अर्चा विग्रह के पूजा की शिक्षा का उपदेश दे रहे हैं। भक्त को बहुत जल्दी अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रातःकालीन मंगल आरती करने चाहिए विधि विधान के अनुसार। तो जो मूर्ख लोग हैं इन विधि की आलोचना करते हैं किंतु वे नहीं जानते कि भगवान भी अपनी इच्छा से सोते हैं। तो वे गलत सोचते हैं, भगवान का रूप है और भगवान की जो अर्चना है वो माया नहीं है। प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पर आप कृपालु होइए, मैं इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र नहीं आप इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र हैं, आत्मा हैं, और अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा इन जीवों के जीवों का पालन पोषण करते हैं। आप मुझ पर कृपालु होइए, जिससे मैं पहले की तरह सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूं जो आपको प्रिय हैं। सोयम समस्त जगताम स्वहृदय के आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृश मनुस्पृशतान यथाहम् त्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणत प्रियोऽसौ। तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों में सबके पालन करता है। वे सबों के जीवन और मित्र हैं, क्योंकि जीवों और भगवान के बीच में शाश्वत सहज स्नेह और प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र हैं। अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा वे सब जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हो सके। केवल भगवान के हेतु की कृपा से वे मरीचि और नारद जैसे पुत्रों को उत्पन्न कर सके। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के लिए वे बहुत प्रिय हैं। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतः भगवान उसके प्रति अतीव वत्सल रहते हैं। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे भगवान, आप सदा ही शरणागतों को वरदान देने वाले हैं। उनके सारे कार्य आपके सारे कार्य आपकी अंतरंगा शक्ति या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भौतिक जगत के रचना में आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हों, कि मुझे अभिमान आ जाए कि मैं सृष्टा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। ये सह प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्त्याम यन्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सजेतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम् च यथा विजय्याम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का प्रिय बनने और उनका वरदान पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित जो वस्तु है उनका श्रेय लेना चाहते हैं कि मैंने ये काम किया, किंतु बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त कर सकता है और भगवान का वरदान प्राप्त कर सकता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, हे भगवान, आपकी शक्तियां असंख्य हैं। जब आप प्रलय के जल में लेटे रहते हैं तो आपकी नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूं। इस समय में मैं विराट जगत के रूप में आपकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। नाभि हृदा देह सतोम्भसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमासम अनंत शक्ति रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्मतो मे मारी रिसिष्टि निगमस्य गिराम विसर्ग। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए और अपना कार्य करते रहने के लिए, आशीर्वाद के लिए मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था, और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों को क्या वचन दिया कि तुम माया में नहीं गिरोगे। थोड़ी सी असावधानी से तुरंत ही अशांति और खून खराब हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कलमश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान जो कि परम है, सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर हंसते हुए मुझे वरदान दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। सो सावदम्भ करुणो भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम गुरुहम विजृंभन उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्व्याग्यरापिनयतात् पुरुषः पुराणः। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतः वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। तो ये 25 श्लोक थे जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है भगवान से, और आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं ये सब घटना। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन और वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की, जितनी अपनी शक्ति थी बुद्धि थी प्रार्थना की, और फिर स्तुति करने के बाद वे चुप हो गए, मानो थक गए हों, अपनी तपस्या और ज्ञान से वो थक करके चुप हो गई। संभवम निशाम एवं तपो विद्या समाधि भीम यावन मनोवचास्तुत्वा विराम सखिन्न वन। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोगों की योजना बनाने और उनके निर्माण को लेकर बहुत चिंतित हैं, और प्रलय का जो जल है उसको देख करके खिन्न है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उनके मोह को दूर करते हुए गंभीर वाणी में कहा, लोक संथान विज्ञान आत्मनहं परिखिद्यतः तमाह गाधया वाचां कस्मलं समयन्निवे। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, प्रलय का जल इतना भयानक था किसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए, बहुत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को जैसे मनुष्य हैं और भी जो दूसरे प्राणी हैं उनको स्थान देने के लिए कहां स्थापित किया जाए, विभिन्न लोगों को कहां स्थापित किया जाए, ब्रह्मा जी चिंतित थे। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए निराश मत हो और चिंतित मत हो, तुम मुझसे जो मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही मैं दे चुका हूं। मां वेद गर्भ गास्तमी सर्ग उद्यम माव तन्मया पादितम यग्रेम यन्माम प्रार्थयते भवान। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या और ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो, इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। भूयस्तम तप आतिष्ठ विद्याम च वेमनास्त्रियाम ताभ्याम अंतर हृदय ब्रह्मन लोकाम रक्षस्य पावृतान। आगे भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तक तुम सृष्टि के कार्य के दौरान भक्ति में लगे रहोगे तो तुम मुझको अपने में और ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे मुझ में तुम हो और ब्रह्मांड और सारे जीव मुझ में है। तथा आत्मने लोके चा भक्ति युक्ता समाहिता द्रष्टासि माम ततम ब्रह्मन् मयि लोकान् त्वमात्मनः। तुम मुझको सारे जीवों में और ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित होती है, केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्संनिविष्ठितं प्रतिचक्षेत माम लोको जया तर्येव कस्मलम्। इस तरह से भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और फिर आगे कहते हैं कि तुम आदि ऋषि हो, भगवान ब्रह्मा जी, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संतान उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापी रजोगुण नहीं आ सकेगा। ऋषि माध्यम न बदनाति पापीयां स्वाम रजोगुण यन्मनोमय निर्बद्धम प्रजा संसृजतो पीते। यद्यपि मैं बद्ध जीवों के द्वारा सरलता से नहीं प्राप्त होता हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु में, भौतिक वस्तु से विशेषतया 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम यन्माम तम मनसे योक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तुभ्यम मन चिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बही नाले न सलिले मूलम पुष्कर से विचिन्मत। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्या की है तथा मुझ में जो तुम्हारी दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। यच्चकर्थांग मत स्तोत्रम मत कथाभ्योदयांकितम यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। मेरे दिव्य गुणों का, जो कि संसारी लोगों को संसारी प्रतीत होते हैं, जो वर्णन तुमने प्रस्तुत किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमा युक्त करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छयां यदस्तोसी गुणमयम् निर्गुणम् मानुवर्णयन्। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त और उनके शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान को जान लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों की प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरदानों का स्वामी हूँ। येतेन पुमान नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रण माम भजे तस्यासु संप्रसीदेयम् सर्व काम वरेश्वर। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है, नहीं कर सकता है। ऐसी स्तुतियों का चुनाव ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेम भक्ति की समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनक को पूरा नहीं करते, चाहे वो कितनी प्रार्थना करें। तो इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और फिर अंतर्धान हो गए। तो ये जो है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता हैं, इसलिए सब लोग जो बड़े बड़े सिद्ध हैं, आपको क्यों नहीं नमस्कार करें, इसलिए हमने आपको ब्रह्मा जी की स्तुति सुनाई और भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे वरदान दिया वो सब बताया। और भगवान की ये जो महिमा है, अर्जुन ने जो है इस श्लोक में जो गाई है, बड़ी सुंदर है। और श्रीमद् भागवत वही जो गीता के सिद्धांत हैं, उनका विस्तार है, इसलिए बड़ा सुंदर जो है ना श्रीमद् भागवत में विस्तृत वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान के दर्शन किए और भगवान से कैसे आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।